वेद को बेहोश अवस्था में कमरे में ले जाया गया था। डॉक्टर जा चुका था, लेकिन उसकी कही बात, टाइम पर ट्रीटमेंट ना होता तो मौत निश्चित थी। पूरे मेहरा हाउस में भारी खामोशी फैला गई थी। धीरे धीरे पूरा परिवार वहां इकट्ठा होने लगा। सबसे पहले रमेश मेहरा अंदर आए। उनके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन बलवंत मेहरा की अनुभवी नज़रों ने साफ पहचान लिया, ये घबराहट सच्ची नहीं, कुछ छुपाती हुई थी। उनके पीछे बृजेश मेहरा, फिर रूपा मेहरा, मौली मेहरा और घर के लड़के सुधीर, सुधांशु, दीपक और वेदांत आ गए। कमरा लोगों से भर गया था, लेकिन हवा भारी, डर से भरी थी। हर चेहरा चिंता भरा दिख रहा था, पर कुछ चेहरों में सिर्फ दिखावा था। वेद बेहोश पड़े थे। ड्रिप की बूंदें गिरने की आवाज़ कमरे की खामोशी में और तेज लग रही थी। मानवी वेद का हाथ पकड़े केवल वहीं बैठी रही। उधर बलवंत मेहरा कमरे के दरवाजे पर खड़े सबको देख रहे थे। उनकी आंखों में घबराहट नहीं, तूफान था। वे अचानक मुड़े और बिना किसी से कुछ कहे सीधे अपने कमरे की ओर चले गए। कमरा बंद होते ही उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और नंबर मिलाया। गौतम। फोन लगते ही बलवंत ने भारी आवाज में कहा, गौतम, सब गड़बड़ हो गया, वेद बेहोश पड़ा है। गौतम हक्के बक्के रह गया। सर, ये कैसे हुआ? बलवंत ने सारा हादसा बताया, वेद को दिया गया नशा, ट्रक, मानवी का बचाना, डॉक्टर की बात। फोन की दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही, फिर गौतम बोला, सर, आपका शक उसी पर है ना, रमेश मेहरा पर? बलवंत की आवाज़ भारी और टूटी हुई थी। हाँ गौतम, और मेरे पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत भी हैं, गौतम तुरंत बोला। तो फिर उसी सबूत के साथ सीधे पुलिस? बलवंत ने उसे बीच में ही रोक दिया। नहीं गौतम, अभी नहीं, अभी पुलिस को देने का समय नहीं। घर की वोट्स, कंपनी के शेयर्स, परिवार की इज्जत सब दांव पर है। एक गलत कदम से घर टूट सकता है, गौतम ने धीमी आवाज में कहा। सर, अगर पूरा काम तैयार हो जाए, सबूत मजबूत हो जाए, तो हम उसे पकड़वा सकते हैं। बलवंत जैसे फट पड़े। काम पूरा हो या ना हो, अब मैं रुक नहीं सकता। मेरे बेटे की जान लेने पर तुला है वो आदमी। आज वेद, कल अवनी या मानवी, कौन जोखिम में रहेगा? उन्होंने गहरी सांस ली, आवाज और कड़क होकर निकली। घर टूटे तो टूटे, कंपनी जाए तो जाए, मेरे बेटे की लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं। कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर बलवंत ने फैसला सुना दिया। गौतम, सबूत लेकर तुरंत आ जाओ, अभी के अभी। आज रात मैं रमेश से बात करके ही मानूंगा। गौतम ने सिर्फ इतना कहा। जी सर, मैं पहुंच रहा हूं, बलवंत ने फोन काट दिया। उनके हाथ कांप रहे थे, गुस्से से नहीं, एक बाप के डर से। कमरे में वापस आने से पहले उन्होंने आईने में खुद को देखा। ये आज का बलवंत मेहरा नहीं था, ये एक पिता था जिसे अपने बेटे को खोने का डर था और जिसने तय कर लिया था, अब रमेश मेहरा को बचाने वाली कोई ताकत नहीं। पूरा मेहरा हाउस वेद के बेहोश होने की खबर से भारी पड़ा हुआ था। हर चेहरा तनाव से घिरा था, पर सबसे ज्यादा बेचैनी वेदांत मेहरा की आंखों में दिख रही थी। वो जब से आया था वेद के कमरे में ही बैठा हुआ था, कुर्सी के किनारे पर झुककर। हर वेदिका ने आखिरकार उसके कंधे पर हाथ रखा। जाओ बेटा, थोड़ा आराम कर लो। उनकी आवाज कोमल थी, पर भीतर छिपा डर साफ सुनाई दे रहा था। सच तो ये था कि वेदिका आज किसी को भी अपने बेटे के पास रहने नहीं देना चाहती थी, उन्हें किसी पर भरोसा नहीं था। वेदांत ने गहरी सांस ली। जी, जाता हूँ। पर उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम वेद की हालत का बोझ उठाए हुए हों। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचा, उस समय करीना बाथरूम से बाहर आई, गीले बाल, तौलिए से चेहरा पोंछती हुई, लेकिन चेहरे पर वही चिड़चिड़ाहट भरा भाव जो आजकल अक्सर होता था। इन दिनों दोनों के बीच दूरियां बढ़ी थीं। वेदांत को अक्सर रीना की याद आ जाती, वो सादगी, वो नरमी। वेदांत ने कमरे में बिना कुछ बोले कदम रखा और सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। करीना ने उसकी तरफ देखकर आवाज तेज कर दी, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए अपना शरीर बिगाड़ रही हूँ, मोटापा बढ़ रहा है और तुम्हें परवाह ही नहीं? वेदांत रुक गया, थका हुआ, टूटा हुआ, पर चुप। करीना आगे बढ़कर बोली, कम से कम एक बार अच्छे से बात तो कर सकते हो, इतनी देर बाद आए हो, और तुम्हें तो वही रीना ठीक थी। मैं वो वेदांत को चोट पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि वो खुद भीतर से असुरक्षित थी। वेदांत ने धीरे थकी हुई आवाज में कहा, कृपया करीना, मैं बहुत थका हुआ हूँ और इस समय बिल्कुल भी लड़ने के मूड में नहीं हूँ। करीना दिल मिला उठी, तो क्या मैं लड़ना चाहती हूँ? मैं यहाँ रोती रहूँ और तुम? वेदांत ने बिना कुछ कहे अपना चेहरा मोड़ लिया। उसकी आंखें लाल थीं, रोने से नहीं, तनाव और दर्द से। वो सीधे बाथरूम की तरफ बढ़ गया। करीना पीछे से बोलती रही, देखो तुम फिर मुझे इग्नोर कर रहे हो। पर वेदांत दरवाजे के पास पहुंच गया था और बिना जवाब दिए बाथरूम के अंदर चला गया। दरवाजा धीरे से बंद हुआ। वेदांत अभी बाथरूम में ही था। शावर चलने की हल्की सी आवाज कमरे में गूंज रही थी। उसके सिर पर दर्द की धड़कन थी। थकान, तनाव और करीना से हुई रोज की बहसें उसे खोखला कर चुकी थी। उसी समय बाहर पड़ा उसका फोन तेजी से वाइब्रेट हुआ। पहले तो उसने इग्नोर किया, लेकिन कॉल बार बार आने लगी। वो झुंझलाते हुए बाहर आया और तौलिए से हाथ पहुंचते हुए फोन उठाया। हेलो, उसकी आवाज थकी हुई थी। सामने से खुरदुरी धीमी आवाज आई। आपका शक सही था, करीना मैडम का बॉयफ्रेंड है और जो बच्चा है वो भी उसी आदमी का है। वो सिर्फ आपके पैसे के लिए आपके साथ है। एक पल को वेदांत को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गर्म चाकू डाल दिया हो। उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। फोन उसके हाथ से फिसलकर फर्श पर गिर गया। धड़ाम। वो लड़खड़ाया और दीवार का सहारा लेकर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। उन शब्दों की गूंज उसके कानों में बिजली की तरह चटक रही थी। बॉयफ्रेंड है, बच्चा उसका है, तुम्हारे पैसे। उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक चेहरे तैरने लगे। रीना, वो दिन जब उसने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया था, वो आंसू, वो बेइज्जती, सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर ने कहा था रीना माँ नहीं बन सकती और उसने यकीन कर लिया। लेकिन सच तो ये था, समस्या रीना में नहीं, उसी में थी। वो खुद पिता नहीं बन सकता था। अब कुछ हफ्तों पहले जब उसके मन में शक उठा था, तभी उसने दोबारा टेस्ट करवाया था और रिपोर्ट ने उसकी दुनिया पलट दी थी। आप जैविक पिता नहीं बन सकते। उस रिपोर्ट को देखकर वो घंटों चुप बैठा रहा था, टूटकर। और आज उसने जब पूरा सच पता करवाया तो सामने आया नाम, करीना कपूर, उसकी दूसरी पत्नी, जिससे उसने अपनी सारी उम्मीदें जोड़ ली थी और जो गर्व से पेट पर हाथ फेर कर कह रही थी, तुम्हारे बच्चे के लिए मोटी हो रही हूँ। एक कड़वी हंसी उसके होंठों पर कांप गई। उसके अंदर कुछ चटक कर टूट गया था। तो ये सब एक झूठ था। उसकी आंखों में पानी भराया, लेकिन आंसू गिरने से पहले ही उसकी नजर दरवाजे की ओर उठी। बाथरूम के शीशे से बाहर झांकते हुए उसने करीना को देखा। वो बेखबर दर्पण में अपने बाल सुलझा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वेदांत के हाथ कांप रहे थे। उसका दिल, उसकी आत्मा, सब सुन पड़ चुके थे। आज उसे पहली बार समझ आया उसने किसे खोया और किसे अपनाकर अपनी जिंदगी तबाह कर ली। घर के बाहर एक काली गाड़ी रुकी। गाड़ी से उतरा गौतम, वेद का सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट। उसके हाथ में एक बैग था और चेहरे पर वही तनाव जो किसी बड़े तूफान से पहले आता है। वो सीधा घर के अंदर आया। ड्राइंग रूम में पूरा परिवार अभी भी वेद को लेकर चिंता में बैठा था, लेकिन गौतम की नजर सिर्फ बलवंत मेहरा पर गई। उन्होंने गौतम को इशारे से घर के अंदर बनी ऑफिस की ओर चलने को कहा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बलवंत मेहरा ने सीधे सवाल दाग दिया। गौतम, क्या सारे सबूत लेकर आए हो? रमेश के खिलाफ जो भी है सब? गौतम ने बैग उन्हें पकड़ाते हुए कहा। जी सर, सब कुछ इस फाइल में है। उसकी बिजनेस लिंक, उसके लोगों के बयान, पैसे के लेन देन, यहाँ तक कि वेद सर को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों के सबूत की। बलवंत मेहरा की मुट्ठी कस गई। उनकी सांसें भारी हो गईं। आंखों में गुस्से की आग थी, पर शब्द अब तक बाहर नहीं आए थे।
गौतम ने समझाया। सर, मैं जानता हूँ आप रमेश सर से बात करने का सोच रहे हैं, लेकिन मेरी सलाह है, इस वक्त आप कुछ भी मत कहिए। कृपया वेद सर के होश में आने का इंतजार कीजिए। बलवंत मेहरा कुछ पल उसे देखते रहे। उनकी आंखों में सवाल था। क्यों रुक जाऊं? जब सबूत हाथ में है तो उसे अभी क्यों ना बेनकाब कर दूं? गौतम ने आगे कहा। सर, रमेश मेहरा बहुत चालाक है। वो समझ चुका है कि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। अगर उसे जरा भी अंदाजा हो गया कि हम उसकी सच्चाई जान चुके हैं, तो वो वेद सर पर एक और वार करने से नहीं हिचकेगा। कमरा एकदम सन्नाटा हो गया। गौतम की आवाज गहरी और धीमी थी। वेद सर अभी बेहोश हैं, बेहद कमजोर स्थिति में। अगर रमेश को पता चल गया कि ये सबूत अब आपके हाथ में है, तो सर, वेद सर की जान को असली खतरा शुरू हो जाएगा। इस बात ने बलवंत मेहरा को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने बैग को टेबल पर रखा और एक लंबी सांस ली। कुछ पलों की चुप्पी के बाद उन्होंने धीरे से कहा। तुम सही कह रहे हो गौतम, वेद के होश में आने तक हमें चुप रहना होगा। उनकी आवाज भारी थी लेकिन नियंत्रित। वेद उठा। फिर हम फैसला लेंगे कि इस घर में किसका रहना है और किसका सच्चाई के साथ सामना होना है। गौतम ने सिर झुकाकर जी सर कहा। बलवंत मेहरा एक कुर्सी पर बैठ गए। एक पिता के दिल में तूफान था, गुस्सा भी, डर भी और वेद को खो देने का खौफ भी। आज की रात उन्हें सिर्फ इंतजार करना था, वेद के जागने का।